गुड इवनिंग मुंबई। असिस्टेंट प्रोसीजर, फर्स्ट सेक्शन क्या है साहब आपका? सेक्शन 142 इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। इन्होंने बोला है कोई भी असेसमेंट करने के पहले असिस्टेंट ऑफिसर के पास तीन पावर है, पहला आपको इशू करे नोटिस, दूसरा आपको इंक्वायरी करे या फिर डायरेक्शन करे आपको स्पेशल ऑडिट करवाने के असेसमेंट की बुक्स से। फर्स्ट क्या है, नोटिस अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1। फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन असेसमेंट अंडर दिस एक्ट असेसिंग ऑफिसर आपको नोटिस इशू कर सकता है। दो तीन बातें हैं, पहला क्या है कि नोटिस मे बी सर्व्ड ऑन एनी पर्सन। दो बातें, जिस बंदे ने रिटर्न फाइल करा है सेक्शन 139 में या फिर 115 WD रिटर्न ऑफ द FBT फाइल करा है, या फिर इन बोथ केस द टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 फॉर फर्निशिंग द रिटर्न हैज एक्सपायर्ड। सिंपल, आपने रिटर्न फाइल करा है पर्टिकुलर सेक्शन जब 139 है या 115 WD है FBT का, या फिर आपने जो टाइम पीरियड था 139 सब सेक्शन 1 में वो निकल गया, दोनों में से एक कोई केसेस। सेकंड केस क्या है, द नोटिस मे बी द नोटिस मे रिक्वायर द पर्सन। तीन काम करने को बोलेगा उसको कि भैया अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करा है फाइन बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम, या फिर रिटर्न ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लबिंग, ठीक है, तो आपको नोटिस इशू करेंगे वो। आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, आपने दूसरे के साथ जिसके आप क्लबिंग होना चाहते हैं आपने तब रिटर्न फाइल नहीं किया। सेकंड क्या है, आपसे बोलेगा भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स लॉ असेसिंग ऑफिसर बोलेगा कब से, लेकिन कितने तक मांग सकता है, प्रोडक्शन ऑफ एनी अकाउंट रिलेटिंग टू अ पीरियड मोर देन 3 ईयर्स प्रायर टू द प्रीवियस ईयर, पिछले 3 साल की प्लस प्रीवियस ईयर, मतलब 1+3 बुक्स ऑफ अकाउंट मंगा सकता है 4 साल तक की, और बोल सकता है कि कोई भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकता है, एनी इंफॉर्मेशन। ऐसा लगता है कि जो नो लास्ट डेट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द एक्ट फॉर इश्यूएंस ऑफ द नोटिस अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 में जो नोटिस इशू करने का उसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन रेज हुआ कि भैया कब तक इशू करेगा असेसमेंट ऑफिसर, तो कोर्ट ने ऑब्जर्व करा फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन असेसमेंट अंडर दिस एक्ट दिस नोटिस मे बी इशूड एट एनी टाइम सो लॉन्ग एज द असेसिंग ऑफिसर हैज द पावर टू प्रोसीड विद द असेसमेंट। मतलब जब तक असेसिंग ऑफिसर के पास पावर असेसमेंट करने तब तक नोटिस 142(1) का इशू कर सकता है। फाइनल एनी अदर इंक्वायरी 142(1), 142(2) इन्होंने बोला फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग फुल इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम और लॉस ऑफ एनी पर्सन द असिस्टिंग ऑफिसर मे मेक सच इंक्वायरी एज ए कंसिडर 142(2)(a) असेसमेंट के टाइम पे अगर उसको लगता है कि भैया असेसी को, तो बोलेगा भैया एक काम करो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का स्पेशल ऑडिट करा दो। फाइन, दिस ऑडिट मे बी डायरेक्टेड बाय द असिस्टिंग ऑफिसर, डायरेक्ट वो करेगा, कब कब करेगा, दो बातें, जब भी प्रोसीडिंग चल रही है तो एट एनी स्टेज, फाइन, या फिर लगता है कि बहुत नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है उसके इंटरेस्ट में और वो रेवेन्यू को इंटरेस्ट में कर सकता है तो वो कर सकता है, लेकिन जब डायरेक्शन इशू करने के पहले उसको चीफ कमिश्नर या कमिश्नर की अपील अप्रूवल लेनी पड़ेगी या फिर उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा असेसी को। ऑडिट कौन करेगा, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉमिनेटेड बाय द चीफ कमिश्नर या कमिश्नर्स। द ऑडिट अंडर दिस सेक्शन मे बी डायरेक्टेड इवन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द असेसी, हाँ स्पेशल ऑडिट वो एडिशनल ऑडिट है, किसी और दूसरे में आपका ऑडिट हो चुका है तो उससे कोई मतलब नहीं। ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या, असेसी को है कि वो अपने जो भी अकाउंट्स आपका ऑडिट हुआ है वो फॉर्म वेरीफाइड बाय द CA उसको सर्टिफाइड फॉर्म फिल करे, वहाँ पर रिपोर्ट में एक फॉर्म नंबर 6B होना चाहिए, उसमें सब कुछ लिखा होना चाहिए असेसिंग ऑफिसर का, टाइम पीरियड होना चाहिए बिल्कुल, द पीरियड ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट एज फिक्स ऑरिजिनली मे बी एक्सटेंडेड बाय द असेसिंग ऑफिसर CMO पे, खुद का भी इस पर कर सकता है बंदा या फिर उसको, लेकिन 180 दिन से ज़्यादा का पीरियड एक्सटेंड नहीं होगा, जो भी आपको पीरियड एक्सटेंड कराए प्लस ऑरिजिनल पीरियड विच इज़ अलाउड टू यू इट इज नॉट कैन नॉट एक्सीड 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विद द डायरेक्शन फॉर ऑडिट इज रिसीव बाय द असेसी। एक्सपेंसिस डिटरमाइन करेगा चीफ कमिश्नर या कमिश्नर्स, पे आपको करने पड़ेंगे, दिस एक्सपेंसेस शैल बी पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अपॉर्चुनिटी असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने पड़ेगी आपको। नेक्स्ट 142(a) इन एस्टिमेट बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर इन सर्टेन केसेस, कुछ कुछ केसेस है जिसमें एस्टिमेशन कौन करेगा, वैल्यूएशन ऑफिसर। पहला, आपको कोई भी असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो एस्टिमेट कर दे वैल्यू ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट जो रेफर्ड है 69(b) में, या फिर कोई भी बुलियन ज्वेलरी वगैरह का वैल्यूएशन करना हो तो वो पावर, तो वो रेफर कर सकता है। वैल्यूएशन ऑफिसर के पास सारी पावर्स हैं जो वेल्टेक्स में 38(1957) वाले में हैं, असेसी को आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। सेक्शन 143 असेसमेंट समरी एंड स्क्रूटनी असेसमेंट, 143 सबसेक्शन 1 समरी असेसमेंट। या फिर आपने अगर रिटर्न आपने फाइल करा 139 में तो आपको समरी असेसमेंट हो सकता है आपका, या आपको नोटिस इश्यू करा गया 142(1) में जो पहला नोटिस था तो हो सकता है 143(1) में, इसको बोलते हैं समरी असेसमेंट। फॉलोइंग प्रोसेसिंग जो न्यू अमेंडमेंट है वो फॉलो करना पड़ेगा आपको। द टोटल इनकम और लॉस इज कंप्यूटिंग आफ्टर एडजस्टिंग फॉलोइंग, कोई भी अर्थमेटिकल एरर इन द रिटर्न है उसको आप सही करिए एडजस्टमेंट, या फिर एनी इनकरेक्ट क्लेम जो अपेरेंट दिख रहा है आपको इन्फॉर्मेशन से उसको सही कीजिए। द टैक्स एंड इंटरेस्ट इफ एनी इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल इनकम कंप्यूटेड एज अबव, उसको देख सकते हैं आप। द सम पेबल बाय और द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू द असेसी इज डिटरमाइंड आफ्टर एडजस्टिंग फॉलोइंग टैक्स, मतलब सम पे जितना करना है असेसी को या फिर आप बंदे को रिफंड देना है वो आप ये एडजस्टमेंट कर लो। चार पांच चीज़ें, पहला TDS है TCS जो भी है, सामने वाले ने कोई एडवांस टैक्स पे करा है आपको, थर्ड वाला DTAA में आपको कोई रिबेट वगैरह देना है बंदे को, या फिर और कोई रिबेट आपको पार्ट ए ऑफ द चैप्टर 8 में देना है आपको। फिफ्थ वन, एनी टैक्स पेड ऑन सेल्फ असेसमेंट एंड एनी अदर अमाउंट पेड बाय वे ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट आपको पे करना है, फाइन। फिर उन्होंने बोला है फोर्थ पॉइंट क्या है, द अमाउंट ऑफ द रिफंड ड्यू टू द असेसी इज ग्रांटेड टू द असेसी, जितना अमाउंट है वो आपको असेसी को ग्रांट कर देना है, फाइन। फिफ्थ वन इसका, कोई भी आपका इंटीमेशन इज प्रिपेयर्ड सो जनरेटेड एनी इंटीमेशन इज प्रिपेयर्ड और जनरेटेड सेंड टू द असेसी स्पेसिफाइंग द सम डिटरमाइंड टू बी पेबल बाय और द अमाउंट ऑफ द रिफंड ड्यू टू द असेसी, पहला अगर कोई लॉस डिक्लेयर करा है रिटर्न में असेसी ने, इज रिड्यूस्ड बट नो टैक्स और इंटरेस्ट इज पेबल बाय और नो रिफंड इज ड्यू टू हिम, देन ऑल्सो एन इंटीमेशन इज सेंड टू द असेसी। अरे रितेश भैया, फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोविजन एन इन्फॉर्मेशन क्लेम अपेरेंट फ्रॉम एन इन्फॉर्मेशन इन द रिटर्न मीन्स, कोई भी क्लेम आपने जो करा है जो इनकंसिस्टेंट किसी दूसरी एंट्री के साथ में। सेकेंड पॉइंट, In respect of which the information required to be furnished under this section to sustain such entry has not been furnished, वो एंट्री नहीं करी आपने या फिर कोई डिडक्शन वगैरह है जो स्टेटूटरी लिमिट्स को एक्सीड करके आया है, ये असेसमेंट नहीं है, ये आपके सिर्फ समरी असेसमेंट, फाइन, बट इट इज नॉट असेसमेंट। सिंस दिस इज नॉट एन असेसमेंट रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल इवन आफ्टर इश्यू ऑफ द नोटिस और इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) आर ए कोशिद वर्सेज CIT गुजरात। स्क्रूटनी असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 असिस्टिंग ऑफिसर कोई एग्जामिनेशन नहीं करता है आपका रिटर्न्स का, वो सिर्फ ये देखता है कि असिस्टिंग ने कोई अंडर स्टेट तो नहीं करी इनकम, एज हैज नॉट कंप्लीट एक्सेसिव लॉस या फिर एक्सेसिव लॉस उसने कहीं मारा हो, और हैज नॉट पेड अंडर पेड टैक्स एनी मैनर। If he wishes to make a detailed examination of the return file by the SEC, तो उसको बोलते हैं अपन scrutiny assessment, detail examination, तो जिसमें दूसरा notice issue करेंगे। First notice कहाँ था भैया, 142 subsection 1 में। Second notice कौन सा है आपका, notice for the scrutiny assessment 143 subsection 2 में। For the purpose of assessment under section 143(3), assessing officer issue करेगा notice किसको, SEC को। Through this notice the SEC may be required on a date. असेसमेंट में भी रिक्वायर्ड ऑन अ डेट टू बी स्पेसिफाइड देयर इन, अटेंड करे असेसिंग ऑफिसर को वो और उसको प्रोड्यूस करे जो भी उसको चाहिए है, लेकिन देन दिस नोटिस कैन नॉट बी सर्वड ऑन द असेसी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। असेसमेंट नहीं है बॉस, 143(2) के नोटिस में फाइनेंशियल ईयर है इन विच द रिटर्न इज फर्निश्ड, फाइन। असेसमेंट 143(3) ऑन द जो डे आपका नोटिस में लिखा है वो अराइव होगा, आफ्टर हियरिंग सच एविडेंस असेसी जो प्रोड्यूस करे हैं एंड और भी कोई असेसिंग ऑफिसर को लगता है किसी पॉइंट पर तो उस पर क्लैरिफिकेशन लेगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा। असेसिंग ऑफिसर राइटिंग में मेक एन असेसमेंट ऑफ द टोटल इनकम और लॉस ऑफ द असेसी एंड डिटरमाइन द सम पेबल बाय हिम और रिफंड ऑफ एनी अमाउंट ड्यू टू हिम, या तो जितना पे करना है या रिफंड जितना पे करना है वो सब डिटरमाइन करेगा, फाइन। Section 144, next, 144 best judgment assessment. Apart from the scrutiny assessment, assessing officer is also empowered to make a best judgment assessment if assessee commits certain faults under this act. कब कब होगा? चार बातें हैं. पहला तो आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया 139(1) में, has not made a return or revised return, कुछ नहीं किया आपने. सेकंड में क्या है, आपने fails to comply with the notice 142(1) में, या फिर fails to comply with directions for special audit 142(2A) में. थर्ड क्या है, after filing a return, आपने return तो फाइल करते लेकिन आपने जो notice issue करा 143(2) में, मतलब जो अपना second notice है उस पर fail हो गए आप. और fourth वाले में क्या है, as per section 145(3) the assessing officer is not satisfied about the correctness or completeness of the accounts of the assessee, or where the method of the accounting provided in section 145(3) for accounting standard as notified under section 145(2) has not been regularly followed by the assessee, the assessing officer may make an assessment. Best judgment assessment how? In all such cases the assessing officer shall, आफ्टर टेकिंग सब कुछ ले लेगा, उसका कर देगा सस्पेंड. अपॉर्चुनिटी असेसी को देनी पड़ेगी आपको. बिफोर मेकिंग एन असेसमेंट अंडर दिस सेक्शन असेसिंग ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू मेक द असेसी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ गिविंग हर देगा. बंदे से पूछा जाएगा, भैया क्यों ना आपका शो कॉज नोटिस टाइप का क्यों ना असेस आपका कर दिया नोटिस. हाउएवर इफ द नोटिस अंडर सेक्शन 142(1), मतलब फर्स्ट नोटिस आपको दे चुके हैं, तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देना है आपको. नेक्स्ट 144(a), power of a joint commissioner to issue direction in certain cases. Normally an assessment has to be completed by the assessing officer. Normally wo karta hai assessing officer, lekin 144(a) empowers the joint commissioner to issue directions to the assessing officer to enable him to complete the assessment. Normally assessment kaun karta hai? Assessing officer. Lekin isme bola gaya ki joint commissioner direction dega kisko, assessing officer ko, ki assessment complete karo. डायरेक्शन तीन बातें, खुद के मोशन पे देगा, असिस्टिंग ऑफिसर के, या असिस्टिंग ने कोई एप्लीकेशन फाइल करी तो देगा. फॉर दिस पर्पज द जॉइंट कमिश्नर मे कॉल फॉर एग्जामिन द रिकॉर्ड्स, कुछ पेंडिंग वगैरह वो दे देगा. आफ्टर सच एग्जामिनेशन वो डायरेक्शन इशू करेगा, गाइडेंस देगा असिस्टिंग ऑफिसर टू कंप्लीट करो असेसमेंट. वो डायरेक्शन बाइंडिंग देंगे किसके ऊपर, असिस्टिंग ऑफिसर के ऊपर. नो डायरेक्शन विच इज प्रेजुडिशियल टू द असेसी कैन बी इशूड बिफोर एनी अपॉर्चुनिटी बीइंग ग्रांटेड. However, direction as to the lines on which an investigation concerned connected assessment should be made are not deemed to be the direction previously assessed. मतलब हाँ, अगर कोई direction आपने investigation के लिए दिए हैं assessment के लिए, तो वो ये नहीं माने जाएंगे कि direction assessed के खिलाफ हैं, उनके लिए आपको opportunity देने की जरूरत नहीं है. Income escaping assessment, reassessment, section 147-152. Section 147 empowers the assessing officer to assess or reassess any income which has the escape assessment. कोई आपकी income escape हो गई है, उसके लिए आपको assessment करना है. Following तीन बातें, पहला assessing officer क्या करना चाहिए, reason to believe that any income chargeable to tax has escape assessment for any assessment year, he may assess or reassess such income or recompute the loss or the depreciation allowance or any other allowance for that assessment year. उसको क्या करना चाहिए, reason to believe करना चाहिए, reason to believe. Second, assessment की कोर्स की प्रोसीडिंग्स में ही में ऑल्सो असिस एनी अदर इनकम चार्जेबल टू टैक्स, कोई दूसरी इनकम जो सब्सिक्वेंटली आ गई हो वो भी कर सकता है. ही में थर्ड वन, ही में असिस सच इनकम अदर देन इनकम इन्वॉल्विंग मैटर्स विच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनी अपील, रेफरेंस और रिविजन. ही में असिस सच इनकम, लेकिन कौन सी इनकम नहीं जिसके लिए आपने अपील, रिवीजन या फिर रेफरेंस वगैरह हो, उसको छोड़कर अगर ये तीन चीज़ें हैं तो वो इनकम नहीं लेना है आपको जिसके लिए अपील पेंडिंग वगैरह हो. इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का मतलब क्या, तो उन्होंने बोला सेक्शन क्लैरिफाई करता है कि तीन बातें हैं, तीन तरह की हैं जो आपको बोलते हैं इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है. पहला, टैक्सेबल इनकम थी, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, बहुत बढ़िया. सेकेंड केस क्या है, आपने रिटर्न फाइल किया बट असेसमेंट नहीं हुआ. थर्ड वन, आपने असेसमेंट हुआ लेकिन आपका लोअर असेसमेंट हुआ. बॉस, इसमें चार बातें हैं कि आपका इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर असेस कर दिया आपने, या फिर लो रेट से असेस कर दिया आपने, एक्सेसिव रिलीफ दे दी गई आपको, या फिर एक्सेसिव लॉस और डेप्रिसिएशन अलाउंस दे दिया गया आपको. फाइन, असेसिंग ऑफिसर ज्यूरिडिक्शन ऑफ रीअसेसमेंट इज लिमिटेड ओनली टू द इनकम विच हैज एस्केप असेसमेंट. मतलब असेसिंग ऑफिसर ज्यूरिडिक्शन ऑफ असेसमेंट इज लिमिटेड ओनली टू द इनकम विच इज असेसमेंट. हाँ उन्होंने ये बोला कि असिस्टेंट ऑफिसर का जो ज्यूरिडिक्शन है वो लिमिटेड कहाँ तक है, सिर्फ एस्केप असेसमेंट तक है, इट डज नॉट एक्सटेंड। तो वो फिर से किसी को जो इनकम ऑलरेडी पहले हो चुका है उसको फिर से नहीं कर सकता, सीधी बात, औकात में रहो। दस द असेसी कैन नॉट यूज द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स टू क्वेश्चन द मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड, या फिर असेसी भी ये नहीं बोलता भैया जो डिसाइड हो चुका है उसको फिर से आप करो। अकॉर्डिंगली द क्लेम्स विच हैव ऑलरेडी बीन डिस अलाउड कैन नॉट बी री एजिटेटेड दो द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द इनकम विच इज सॉट टू बी टैक्स मे बी क्लेम्ड नाउ। आपकी जो उन्होंने बोला जो क्लेम आपके थे वो आपने डिसअलाउड कर देते हैं, ठीक है साहब, लेकिन आपको जो एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू दैट इनकम है उनको हम क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इश्यू ऑफ नोटिस व्हेन वेयर इनकम हैज एस्केप असेसमेंट, सेक्शन 148 बोला ही आपका अगर 147 में आपकी इनकम एस्केप है तो आपको नोट इश्यू करें। उन्होंने बोला कोई भी असेसमेंट करने के पहले, रीअसेसमेंट करने के पहले या फिर रिकम्पिटिशन अंडर सेक्शन 147 आपको एक नोट इश्यू करना पड़ेगा जो अपना होगा थर्ड नोटिस। फाइन, पहला नोटिस 142(1) में था, सेकंड नोटिस 143(2) में था एंड थर्ड नोटिस 148 में है। इस नोटिस से आप क्या बोलेंगे, असेसिंग ऑफ असेसी से बोलेंगे भैया कि आओ अपना रिटर्न फाइल करो फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट या फॉर द रीअसेसमेंट इज टू बी डन। इवन दो असेसी माइट हैव ऑलरेडी फाइल्ड रिटर्न फॉर द प्रीवियस ईयर ही इज रिक्वायर्ड टू फर्निश, आप पहले कर चुके हैं लेकिन अगर आपने 148 इशू हुआ है तो आपको फिर से फाइल करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, द पीरियड विद इन विच दिस रिटर्न इज टू बी फर्निश इज सच एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस इटसेल्फ, ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई ऑन दिस रिटर्न एज इफ सच रिटर्न वर अ रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अंडर सेक्शन 139। द असेसिंग ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बिफोर इशूइंग एनी नोटिस अंडर दिस सेक्शन टू रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर डूइंग सो। कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं आपको नोटिस अंडर सेक्शन 148 में इशू किया गया है। जो भी रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड कर चुके हैं किसी कोर्ट ने ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इम्प्रॉपर नोटिस अंडर सेक्शन 148, दस इट इज वेरी यूजफुल टू हैव अ डीप इनसाइट इनटू द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। उन्होंने बोला सेपरेट नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड फॉर ईच असेसमेंट या फॉर विद द रीअसेसमेंट इज टू बी डन। जितने साल का आप रीअसेसमेंट कर रहे हैं उतने साल के लिए आपको नोटिस इशू करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया है। हाउएवर फॉर द सेम असेसमेंट ईयर फॉर विच अ नोटिस अंडर सेक्शन 148 हैज ऑलरेडी बीन इशूड, सेपरेट नोटिस आपको रिक्वायर नहीं है, पागल होएगा। हाउएवर फॉर द सेम असेसमेंट ईयर, आपका सेम असेसमेंट जिसके लिए आप असेसमेंट कर रहे हैं उसके लिए नोटिस इशू कर चुके तो पागल मत करो, पागल मत बनो। सो थर्ड पॉइंट क्या है, नोटिस अंडर सेक्शन 148 कैन बी इशूड देयर बाय असेसमेंट अंडर सेक्शन 147 कैन बी मेड ओनली व्हेन असेसिंग ऑफिसर हैज, आपको रीजन टू बिलीव होना चाहिए बॉस, चेंज ऑफ द ओपिनियन इज नॉट अ रीजन टू बिलीव। बिफोर इशूइंग द नोटिस असेसिंग ऑफिसर रिक्वायर टू रिकॉर्ड हिज रीजंस ऑफ डूइंग सो, आपको रीजन दो भैया आप नोटिस इशू करने पहले। द रिकॉर्डेड रीजंस आर नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड टू बी कम्युनिकेट टू द असेसी, जरूरी नहीं असेसी को बताओ, लेकिन अगर हाउएवर आफ्टर असेसी हैज कंप्लाइड विद द नोटिस, लेकिन अगर असेसी ने कंप्लाइड कर लिया नोटिस को फिर आपको बताना जरूरी है बॉस रीजंस क्या क्या है। टाइम लिमिट की बात करिए, नॉर्मली जो नोटिस अंडर सेक्शन 148 है कैन बी इशूड 4 साल में फ्रॉम द एंड ऑफ अ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है अभी क्या चल रहा है 9-10, ठीक, इसके 4 साल के पहले तक आप कर सकते हैं। अगर आपकी लेकिन जो आपकी इनकम स्कीमिंग असेसमेंट है वो आपकी 1 लाख या उससे ज्यादा है तो 4 साल का पीरियड 6 साल का हो जाएगा। एक्सेप्शन क्या है, अगर आपका नॉन रेजिडेंट एजेंट के ऊपर आप काम कर रहे हैं सब कुछ तो 2 साल का पीरियड, 2 साल के बाद नहीं कर सकते बॉस रेलिवेंट असेसमेंट या। फाइन, नेक्स्ट अथॉरिटी हु कैन इशू द नोटिस, इफ नोटिस इज बीइंग इशूड विद इन 4 ईयर्स, मतलब अपने बात की ना 4 साल 6 साल, अब उन्होंने बोला अथॉरिटी कौन इशू करेगी, अगर उन्होंने कहा आपका कोई असेसमेंट नहीं हुआ है 143(3) या 147 में तो असेसिंग ऑफिसर खुद बैठा है। फाइन, अगर आपका हो चुका है 4 साल वाली बात कर रहे हैं अपन, 4 साल में 2 बातें, हो चुका है नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो असेसिंग ऑफिसर, हो चुका है तो कौन, बाय असेसिंग ऑफिसर ACDC, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ज्वाइंट परमिशन जो JC की लेगा परमिशन। अब ये 4 से हटकर 6 साल का आ गया तो कौन, और आपका नहीं हुआ है असेसमेंट बाय द असेसिंग ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ अ ज्वाइंट कमिश्नर, ओनली द ज्वाइंट कमिश्नर सर्टिफाइड। हो चुका है तो चीफ कमिश्नर या कमिश्नर। समराइज करें इसको, एक कॉलम बनाओ ईयर्स का, चार साल और छह साल का, एक बनाओ नहीं हुआ है, एक बनाओ हो गया है। फाइन, चार साल में पहले चार साल का देखेंगे अपन, नहीं हुआ है तो असिस्टेंट ऑफिसर, हो गया है तो एसीडीसी जिसकी परमिशन से लेकर आप। फिर छह साल का नहीं हुआ है तो कौन, कोई भी ज्वाइंट कमिश्नर की परमिशन ले लो, हो गया तो कमिश्नर या फिर चीफ कमिश्नर। सेक्शन 153, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट। एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड विद इन फॉलोइंग टाइम लिमिट्स। असेसमेंट रीअसेसमेंट ऑफ इनकम, अगर आपका ऑर्डर कब का रिलेटेड है, 143 या 144 में स्क्रूटनी या बैच रिटर्न असेसमेंट है तो 21 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द ओरिजिनल असेसमेंट ईयर। मतलब सीधे वाला आपको टाइम लिमिट दिया या ऑर्डर कब तक देंगे असेसमेंट रीअसेसमेंट का, उन्होंने बोला आपका 143 144 है तो स्क्रूटनी और बैच रिटर्न असेसमेंट तो 21 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ओरिजिनल असेसमेंट ईयर। ऑर्डर अंडर सेक्शन 147 है, मतलब रीअसेसमेंट वाला ऑर्डर है आपका 9 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर इन विच द नोटिस फॉर रीअसेसमेंट वॉज सर्व्ड। दो बातें हैं, फाइनेंशियल ईयर एंड सर्व्ड होना चाहिए। फिर असेसमेंट और रीअसेसमेंट ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स है, सेम चीजें हैं, सेक्शन नंबर अलग है बस। बट आपका थर्ड वन इज फ्रेश असेसमेंट है। इफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 254, 263 या 264 हुआ है, क्या हुआ है इसमें, सेटिंग असाइड कैंसिलिंग ओरिजिनल असेसमेंट रिक्वायरिंग फ्रेश असेसमेंट हुआ है, तो 9 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर अंडर सेक्शन 254 इज रिसीव्ड बाय द कमिश्नर और द ऑर्डर अंडर सेक्शन 263 और 264 इज पास बाय द कमिश्नर। एक्सेप्शन इफ ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग्स, अगर आपने कोई रेफरेंस कर दिया था टीपीओ को तो सिंपली सबको 12-12 महीने बढ़ा दो, मतलब आपका असेसमेंट 143 स्क्रीन और 144 में होगा तो पहले क्या था 21 महीने या 33 महीने हो जाएगा, वो रीअसेसमेंट था 147 में वो आपका 9 महीने का था अब 21 महीने हो जाएगा, और फ्रेश आपका पहले 9 महीने का था अब 21 महीने जाएगा, 12 महीने बढ़ा दो सीधी बात। फिर उन्होंने बोला जो आपने 153 में डेडलाइन दिया था 21 महीने 9 महीने 9 महीने और जो भी है, कुछ एक्सक्लूजन है। पहला फर्स्ट एक्सक्लूजन क्या है, द टाइम टेकन इन रीओपनिंग द प्रोसीडिंग्स, द टाइम टेकन इन रीओपनिंग, आपको रीओपनिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स या फिर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट दी है तो उसमें जो टाइम लगा है उस टाइम को हटा दो आप, सेक्शन 129 में बोला गया था। फाइन, सेकेंड क्या है एक्सक्लूजन, अगर कोई स्टे ऑर्डर वगैरह है उस टाइम को हटा दो आप। थर्ड क्या है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन है जिनको रिटर्न फाइल करना था 139 सबसेक्शन 4C में, ठीक है, लेकिन वो उनका एग्जम्पशन का जो भी क्राइटेरिया था, पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑन विद द असेसिंग ऑफिसर इंटीमेट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब थोड़ी द कॉन्फर्मेशन ऑफ सेक्शन 10 और एंडिंग विद द डेट ऑन विद द कॉपी ऑफ द ऑर्डर। दो बातें बोली है ना, एक बात बोली सॉरी, क्या कब से आपको एसोसिएशन अंडर सेक्शन 131 के बारे में क्या बोला है, जब भी असेसिंग ऑफिसर ने इंटीमेट करा सेंट्रल गवर्नमेंट को तब से लेकर जब तक सामने वाली पार्टी ने ऑर्डर न दे दिया हाँ भैया सही है कि नहीं है, अप्रूवल न दे दियो, जो बीच में टाइम पीरियड लगा 2-4 महीने 6 महीने उसको हटाना आपको, आपने कोई स्पेशल ऑर्डर कराया था उसमें जो टाइम पीरियड ओपनिंग से क्लोजिंग तक का लगा है वो हटा देना आपको, जब तक असेसिंग फर्निश रखा दे रिपोर्ट। द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑन विद द असेसिंग ऑफिसर रिसीव द डिक्लेरेशन बाय द असेसी अंडर सेक्शन 158A1 एंडिंग विद द डेट ऑन विद द ऑर्डर अंडर सेक्शन मेड टू हिम। छठवां एडवांस बिलिंग वगैरह के लिए आपने जो टाइम पीरियड लगा है उसमें हटा दो टाइम। ये सातवां क्या है, एप्लीकेशन टू द सेटलमेंट कमीशन, इन अ केस वेयर एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड टू द सेटलमेंट कमीशन अंडर सेक्शन 145C और जो भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करी है या डिक्लेयर्ड इनवैलिड है, नो ऑर्डर इज पास ऑन सच एप्लीकेशन एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रोसीडिंग्स बिफोर सेटलमेंट इज गॉट अवेटेड, द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच एप्लीकेशन इज मेड and ending with the date on which the proceedings under before settlement is उसको जब से इसकी स्टार्ट जब तक खत्म होता है उसको हटाना है सीधी बात आफ्टर एक्सक्लूजन ऑफ द अबव पीरियड अ मिनिमम पीरियड ऑफ वन ईयर शैल बी अलाउड टू द असिस्टेंट ऑफिसर फॉर मेकिंग द ऑर्डर उन्होंने भाड़ में जाए आपने जो जो सात चीजों में आपने पीरियड एक्सक्लूड करा है कम से कम एक साल तो होने चाहिए बेचारे असिस्टेंट ऑफिसर के पास कि वो ऑर्डर सस्पेंड कर पाए असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च एंड रिक्विजिशन 153 ए बी सी डी स्किप करो वन फिफ्टी थ्री भी टाइम लिमिट स्किप करना है सेक्शन 154 रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक इन्होंने जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटी हैं वो अमेंड कर सकते कोई भी ऑर्डर पास बाय इट अंडर द प्रोविजन दिस एक्ट फाइन लेकिन जो 154 में कैन बी डन ओनली विद अ व्यू टू रेक्टिफाइंग एनी मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड एनी इंटीमेशन और डीम्ड इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) कैन ऑल्सो बी अमेंडेड अंडर दिस सेक्शन देयर एनी मैटर ऑफ एन ऑर्डर हैज बीन कंसीडर्ड और डिसाइडेड इन एनी अपील और रिविजन द अथॉरिटी पासिंग सच ऑर्डर मे अमेंड द ऑर्डर इन रिलेशन टू एनी मैटर अदर देन द मैटर विच हैज बीन सो कंसीडर्ड एंड डिसाइडेड द अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज किसके मोशन पे खुद के मोशन पे असिस्टेंट ने अपीलेशन लगाई या फिर अथॉरिटी कंसर्न is a commissioner appeals on an application by the assessing officer also obviously agar aap koi amendment karte ho wo assessor ke khilaf hai to opposite do bhaiya ko aap amendment cannot be made after the expiry of 4 years from the end of a financial year in which the order sought to amend it was passed time period kitna hai 4 saal us financial year ke khatam hone se tab tak amendment kar sakte hain aap वेर एनी एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंशन फिर क्या है उन्होंने बोला अगर कोई एप्लीकेशन फॉर द अमेंडमेंट अंडर द सेक्शन इज मेड बाय द असेसी अगर असेसी ने कोई एप्लीकेशन दिया अमेंडमेंट के लिए द अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ऑफ दिस एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 6 महीने में फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड देखो बॉस 4 साल दिया है आपको अमेंडमेंट जो भी हैं पिछले वो आप देख लो और आपको 6 महीने के अंदर पूरा खत्म करना है अगर एप्लीकेशन को अमेंडमेंट एसएससी ने दी है तो इफ एप्लीकेशन ऑफ द एसएससी हैज बीन फाइल्ड विद इन द टाइम लिमिट ऑर्डर कैन बी मेड इवन आफ्टर 4 इयर्स इफ अमेंडेड ऑर्डर इज टू बी अमेंडेड अगेन तो टाइम लिमिट कब से कैलकुलेट होगी विद रिस्पेक्ट टू द अमेंडेड ऑर्डर एंड नॉट द ओरिजिनल ऑर्डर वो क्या बोल रहे हैं व्हाट दे आर सेइंग कि आपका अमेंडेड ऑर्डर था टू बी अमेंडेड अगेन ठीक है टाइम लिमिट शैल बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द अमेंडेड ऑर्डर एंड नॉट द ओरिजिनल ऑर्डर द सीबीडीटी हैज क्लैरिफाइड वाइड सर्कुलर नंबर 68 दैट मिस्टेक अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ सब्सिक्वेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ बाय द सुप्रीम कोर्ट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड सेक्शन 154 लगेगा फाइन व्हाट दे आर सेइंग अगर कोई मिस्टेक अराइज हुए एज अ रिजल्ट ऑफ सब्सिक्वेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ बाय द सुप्रीम कोर्ट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड कोई डिबेटेबल इश्यू है तो सेक्शन 154 इज नॉट एप्लीकेबल ओवर देयर फाइन मिसलेनियस मैटर्स क्या है नोटिस ऑफ द डिमांड अंडर सेक्शन 156 वेयर एनी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन और एनी अदर सम इज पेबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट तो असिस्टिंग ऑफिसर नोट इश्यू कर सकता है डिमांड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म स्पेसिफाइंग द सम्स ऑफ पेबल सर्विस ऑफ नोटिस सेक्शन 282 फॉर वेरियस प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट अ प्रॉपर नोटिस टू दिस इफेक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सर्व अपॉन द असिस्टी सेक्शन फॉर वेरियस प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट अ प्रॉपर नोटिस टू दिस इफेक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सर्व अपॉन द असिस्टी सेक्शन 282 क्या बोलता है किस मैनर में आप नोटिस सर्व करेंगे ताकि वो वैलिड नोटिस होगा अकॉर्डिंगली टू दिस सेक्शन आर नोटिस अंडर दिस एक्ट मे बी सर्व ऑन द पर्सन इसका नाम लिखा हो पोस्ट पर जिसको आपने समन इश्यू करा हो कोर्ट ने अंडर द सीसीपी 1908 मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एनी सच नोटिस मे बी एड्रेस इन केस ऑफ अ फर्म और एचयूएफ टू एनी मेंबर ऑफ द फर्म or a manager or any adult member of the firm. Local authority case mein, company case mein, principal officer aa gaya. In the case of any other association or body of individual to the principal officer or any member thereof, in the case of any other person to the person who manages the control affairs. सीधी बात, HUFO firm है तो कोई भी member को, local authority है उसके principal officer को, कोई भी AOP या BOI है तो उसके principal officer को, और कोई भी दूसरे बसते हैं जमाने भर के तो जो person manage कर रहा है सब उस fine. Appeal and revisions. First is appeal to CIT appeals. उसमें first क्या है, appealable order before commissioner appeals section 246A. ढेर सारे 14 केसेस दिए हैं इसमें फाइन जो अपीलेबल ऑर्डर हो सकते हैं. पहला ऑर्डर नहीं, बेसिकली क्या बोला है इसमें, कोई भी एससीसी एग्रीड है बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर. एससीसी परेशान है बेचारा ऑर्डर में, अपील कर सकता है किसको, कमिश्नर अपील्स को. पहला क्या है, एनी ऑर्डर अगेंस्ट द एससीसी जहां पर एससीसी डिनाइज कर रहा है कि जो लाइबिलिटी एसेस की गई है तब वो कर दे. एनी ऑर्डर ऑफ द असेसमेंट 143(3) में और 144 जहां एससीसी ऑब्जेक्ट कर रहा है इनकम असेस जो करिए उसके लिए, या फिर अमाउंट ऑफ टैक्स डिटरमाइन करा उसके लिए, या फिर लॉस कंप्यूट करा उसके लिए, या फिर जो स्टेटस असेसी का आपने डिफाइन करा उसके लिए. थर्ड वन, ऑर्डर ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट रिकम्प्यूटेशन 147(150) में. फोर्थ क्या है, ऑर्डर ऑफ असेसमेंट 115WDE और 115WF FBT वाला आ जाए. फिर छठवां क्या है, पांचवा क्या है, ऑर्डर ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट ऑफ फ्रिंज बेनिफिट अंडर सेक्शन 115WG. छठवां क्या है, ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 153 सर्कल का आ गया. सातवां, कोई भी ऑर्डर अंडर सेक्शन 154(55) हैविंग द इफेक्ट ऑफ एनहेंसिंग द असेसमेंट और रिड्यूसिंग अ रिफंड. एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 163 ट्रीटिंग द असेसी एज द एजेंट ऑफ द नॉन रेजिडेंट. फाइन, नौवां क्या है भैया, 170 सक्सेसर वगैरह बिजनेस का पॉइंट है उसके लिए असेसमेंट 171 है. फिर पार्टीशन जो 201 में TDS वगैरह फेलियर डिडक्ट करने का हो गया है, 206C में रिलेटेड विद द फेलियर टू कलेक्ट TCS वगैरह आ गया है, 237 में रिफंड वगैरह आ गया है. एंड 14th लास्ट पॉइंट क्या है, एन ऑर्डर इम्पोजिंग अ पेनल्टी अंडर सेक्शन 221, 71, 158BSA, 271B, 271C एंड चैप्टर 21. नेक्स्ट, अपील बाय पर्सन डिनाइंग लाइबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स इन सर्टेन केसेस. सेक्शन 248. सेक्शन 248 प्रोवाइड्स अ राइट ऑफ अपील इन फॉलोइंग केस रिलेटेड विद द डिडक्शन ऑफ टैक्स. द टैक्स डिडक्टेबल ऑन एनी इनकम अदर देन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 195. दिस टैक्स इज टू बी बॉर्न बाय द पर्सन बाय हुम द इनकम इज पेबल. वो तीन ब्लेम कर रहा है. पहला, जो TDS आप इनकम पे लगा रहा है अदर देन द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 145. This tax is to be borne by the person by whom the income is payable and such person claims that no tax was required to deduct it. Tax deduction is not required. Teen baatein bol raha hai. He may, after payment of such tax to the credit of the central government, appeal to the commissioner of appeals for a declaration that no tax was deductible on such income. Form kya hoga boss? To unhe bola form number 35 mein dena hai aapko. Form appeal ka form. Aur following fees lagani pade aapko har appeal ke saath mein. Jab aap ya wahan par aapka by the total income of the assessee as computed by the assessing officer in the case to which the appeal relates is 1 lakh ya usse kam hai to fees 250 rupaya, 1 se 2 lakh hai to 500 rupaye, 2 lakh se zyada hai to 1000 rupaye aur dusre cases mein 250 rupaye. ye total income ke teen cases ho gaye, 1 lakh se 1 lakh hai, 1 lakh se kam to 250, 1 se 2 to 500, 2 se zyada to 1000 rupaye aur second one in any other case other than total income, yes sir, ठीक है sir, fees is 250 rupees. The appeal has to be presented within 30 days from the following date. Where the appeal is under section 248 relating to the tax deduction under section 195, the date of payment of the tax. Where the appeal relates to any assessment or penalty, the date of service of the notice of the demand relating to the assessment or penalty. In any other case, the date on which the intimation of the order sought to be appealed against is served. जो commissioner appeal है वो power है बंदा condonation और delay कर सकता है. Before filing of appeal, the assessee is required. क्या required है? Where a return has been filed by him to pay the tax due. आप tax जमा कर दो. अगर आप return file नहीं करा, to pay an amount equal to the amount of the advance tax. सही है यार, पहले आप जमा करो, फिर आपने आओ मैदान में. प्रोसीजर क्या है अपील? नेक्स्ट आ गया प्रोसीजर इन अपील सेक्शन 250. द कमिश्नर अपील शैल डेट एंड प्लेस वगैरह फिक्स करेगा. द फॉलोइंग शैल द राइट टू बी हर्ड एट द हियरिंग ऑफ द मीर. अपीलेंट खुद आया या कोई अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव लिया या फिर असिस्टेंट ऑफिसर है या पर्सन है रिप्रेजेंटेटिव में कर देगा. कमिश्नर अपील हैज द पावर टू एडजर्न द हियरिंग ऑफ द अपील फ्रॉम टाइम टू टाइम. बिफोर डिस्पोजिंग अपील इंक्वायरी वगैरह कर सकता है, एडिशनल ग्राउंड वगैरह एंटरटेन कर सकता है. वो ऑर्डर ऑफ अपील करो डिस्पोजिंग ऑफ अपील राइटिंग में होंगे, वो पॉइंट डिटरमाइन करेगा क्या डिसीजन वगैरह देगा, रीजन देगा डिसीजन के लिए. फाइन. इन एवरी अपील द कमिश्नर अपील वेयर इट इज पॉसिबल मे हियर एंड डिसाइड सच अपील विद इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल एंड सच अपील. मतलब टाइम पीरियड दिया है कि भैया जब तक हो पाए आप एक साल में डिस्पोज ऑफ कर दो अपील, डिस्पोज ऑफ. नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ एडिशनल एविडेंस बिफोर द कमिश्नर अपील्स रूल 46A. During the course of appeal, the appellant can produce only those evidence which have been produced by him during the course of the proceedings. Appellant है वो कौन से evidence produce कर सकता है जो उसने पहले करे हैं. Additional evidence कर सकता है following case में. पहला क्या है, अगर assistant officer ने पहले refusal करा तो कर सकता है, या फिर बंदे ने pass कर दिया था order before opportunity for production pass करने पहले उसने करा था. Sufficient reason है उसके पास. डी वाला सी आई टी अपील रिक्वायर्स एडिशनल डॉक्यूमेंट तो कर सकता है. इन द अबव मेंशन केसेस इफ एन एडिशनल एविडेंस आर एडमिटेड द कमिश्नर अपील इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड इन राइटिंग द रीजन फॉर इज एडमिशन. द कमिश्नर अपील्स फोर्थ पॉइंट क्या है, द कमिश्नर अपील शैल नॉट टेक इन टू अकाउंट एनी एडिशनल एविडेंस एज अबव अनलेस द असिस्टिंग ऑफिसर हैज बीन अलाउड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी. सही बात है, बेचारे वो भी तो बैठा है गाँव में, उसको आप रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दो भैया, आपने क्यों नहीं. पहला क्या पॉइंट है, क्रॉस एग्जामिन करे विटनेस प्रोड्यूस बाय द अपीलेट और टू प्रोड्यूस एनी एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स और एनी विटनेस इज रिब्यूटल ऑफ द एडिशनल एविडेंस. नेक्स्ट पावर ऑफ द कमिश्नर अपील सेक्शन 251. एनहेंस कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, एनल कर सकता है, पेनल्टी लगा सकता है. कोई भी अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर इम्पोजिंग ए पेनल्टी, ये मैं कंफर्म कैंसिल, कोई भी अपील की थी जिसकी अगेंस्ट में फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन एनी अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट ही मे कंफर्म रिड्यूस एनहेंस और एनल द असेसमेंट. सेकंड वन क्या है, इन एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर इम्पोजिंग अ पेनल्टी ही मे कंफर्म और कैंसिल सच ऑर्डर और वेरी टू द अर्लियर टू एनहेंस रिड्यूस अ पेनल्टी. इन एनी अदर केस ही मे पास ऑर्डर इन अपील थिंग सेट. कमिश्नर अपील एनहेंस नहीं करता बेचारे को, अपॉजिटिव बीइंग हंड ना दे एसएससी को. वो जब भी अपील डिस्पोज ऑफ करेगा तो जो मैटर पहले कंसीडर नहीं करे वो कमिश्नर अपील कर सकता है, बट सेम मैटर से रिलेट होना चाहिए. न्यू अमेंडमेंट क्या है, नेक्स्ट अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द असेसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड टू सेटलमेंट कमीशन. इन एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द असेसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड टू द सेटलमेंट कमीशन लेटर ऑन द प्रोसीडिंग बिफोर द कमिश्नर गॉट अबेटेड अंडर 245HA द कमिश्नर अपील कैन कन्फर्म रिड्यूस एनहांस और एनहेंस और एनल द असेसमेंट आफ्टर टेकन इन टू कंसिडरेशन द फॉलोइंग. द मटेरियल एंड अदर इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द असेसी, द रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी हेल्ड बाय द सेटलमेंट कमीशन, द एविडेंस रिकॉर्डेड बाय द सेटलमेंट कमीशन इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स और सच अदर मटेरियल एज मे बी ब्रॉट ऑन हिज रिकॉर्ड. अदर रिलेटेड प्रोविजन क्या है, एज पर सेक्शन 220 कोई भी नोटिस अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ डिमांड हैज नॉट बीन पेड बाय द असेसी 30 दिन के अंदर सर्विस ऑफ द नोटिस के, तो वो डिफॉल्ट ऑफ द असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा एंड ऑल द कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन शैल बिकम एप्लीकेबल. सेक्शन 220 सबसेक्शन 6 प्रोवाइड्स दैट वेयर एन असेसी हैज प्रेजेंटेड एन अपील अंडर सेक्शन 246A द असेसिंग ऑफिसर मे ट्रीट द असेसी हैज नॉट. अगर असेसी ने बंदे ने क्या करा पेनल्टी वगैरह वो कर दी उसने प्रेजेंटेड ऑन अपील अपील वगैरह लगा दी उसने 246A में, तो डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा असेसी का रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट इन डिस्प्यूट अपील. दिस इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द ऑफिसर और फॉर दिस ही मे इम्पोज सच कंडीशनल थिंग्स फिट फॉर द. ये हो गया बराबर. नेक्स्ट है 263 रिविजन ऑफ ऑर्डर प्रिजुडिशियल टू द रेवेन्यू. इसमें यह बोला है कि जो भी रेवेन्यू हैज नॉट राइट ऑफ अपील टू द अपीलेट कमिश्नर उसको राइट नहीं मिला है, डिपार्टमेंट को राइट मिला है अपील करे अपीलेट कमिश्नर को. फाइन. अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास बाय द असिस्टेंट ऑफिसर. Thus, if the order passed by the assessing officer is erroneous, as per the scheme of the act, the revenue has no right of appeal to the appellate commissioner, appeal karne ka koi right nahi hai. इसीलिए दस इवन इफ द ऑर्डर पाई बाय द असिस्टेंट ऑफिसर इज एरेजनस अगर वो गलत हुआ सो एज टू द प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैन नॉट अप्रोच टू द सीआईटी अपील फाइन एक अवेलेबल अपील क्या है आप तो रेक्टिफिकेशन दिखा रहे 154 में अनदर क्या है सेक्शन 263 प्रोसेस क्या प्रोसीजर क्या है द प्रोसेस ऑफ रिविजन अंडर सेक्शन 263 कमेंस बाय द कमिश्नर कॉलिंग फॉर और एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ एनी प्रोसीजर अंडर दिस एक्ट As per this section, the commissioner may call for examining the records of any proceedings under this act. Any proceedings, fine. Unlike section 147, the commissioner under section 263 is not required to record, assign any reason for calling such records. Reason dene nahi padte hain. No notice is required to be given by the assess to the assessee. However, as mentioned subsequently, an opportunity of being heard is required to be given by the commissioner. After calling for or examining the records, commissioner ko is to consider if the order passed by the assessing officer is galat hai and this is prejudicial to the interest of the revenue. If the commissioner considers that the order passed by the assessing officer is erroneous, interest of the revenue, toh wo pass karta hai aur koi order justify kar de usko, enhancing wagera kar sakta hai. ऑर्डर में भी फाउंड एरोनियस ड्यू टू मिस्टेक्स इन द ओरिजिनल ऑर्डर पहले जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसमें मिस्टेक्स हैं किसी भी कोर्ट के जजमेंट्स के अकॉर्डिंग मिस्टेक है रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन द लॉ है तो मिस्टेक्स है और एविडेंस इन द पोजिशन ऑफ द कमिश्नर तो मिस्टेक्स है टाइम लिमिट्स क्या क्या है द ऑर्डर अंडर द सेक्शन कैन बी पास ओनली आफ्टर गिविंग द असेसी एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड An order under this section cannot be made after the expiry of 2 years from the end of a financial year in which the order sought to be revised was passed. What they are saying? Financial year जब से खत्म हो रहा है उसके आप 2 साल तक order pass कर सकते हो उसके बाद pass नहीं कर सकते. Fine. आपको वो section 129 में जो exclusion है आपको time limit का वो आपको हटाना है. Stay order वगैरह है, injunction वगैरह है. Order which may be revised under section 260 the commissioner may revise all the order passed by the assessing officer including An order for assessment made by the Assistant Commissioner, Deputy Commissioner or the ITO on the basis of direction issued by the Joint Commissioner. An order made by the Joint Commissioner in the performance of the function of an Assessing Officer. Where an order passed by the Assessing Officer has been a subject matter of any appeal. Commissioner can still exercise his revisionary jurisdiction under this section. Record matlab kya? Section clarified that for the purpose of this section, record includes all records relating to any proceeding on this act available at the time of the examination by the commissioner. This effectively means that the revision under this section can be done on the basis of those records also which were not available at the passing of the but come into picture subsequently. Revision of order prejudicial to the RCC section 264. Section 264. In the case of any order other than the order under section 263 applies, passed by the authority subordinate to him, the commissioner may call for records of any proceedings. Assessee ke liye faydemand hai, however, no order which is prepared by the assessee can be passed under section. This order may be passed by the commissioner either on his own motion or through application kisne kiya assessee ne. Har application saath mein usko 500 rupees ki fees lagani padi. An order by the commissioner declined to interfere is for the purpose of this section deemed not to be order prejudicial. Jo time limit kya hai aapko? If order is being revised by the commissioner खुद के motion पर कर रहा है तो this revision is to be made within 1 year from the date of the original order time बहुत कम दिया था उन्होंने fine अगर आपने application ने assessee ने दी है तो within 1 year from the date on which the order in question was communicated to him एक साल के अंदर कब से from the date on which the order in question was communicated to him or the date on which he claims to know this whichever earlier जो पहले हो On every application for the assessee for revision under this subsection, an order has to be passed within 1 year from the end of a financial year in which such application is made by the assessee for revision. Order and which cannot be revised, कौन-कौन order revised हो सकते हैं? Where the order is appealable order है कोई, second one is subject to an appeal है तो. CBT ने clarification दिया है कि साहब Commissioner shall not revise any order under section where the order has been made the subject of any appeal to the commissioner to the डाउट हैज बीन अराइज। ठीक है सर,